ब्रह्म शब्द के अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं। ब्रह्म आत्मा को भी कहते हैं, ब्रह्म इस प्रकृति को भी कहते हैं। भगवान बताते हैं सर्व योनिश कौंतेय मूर्तय संभवन्ति च तासां ब्रह्म महत्योने अहम बीज प्रदापिता। परम सत्य क्या है? सब कुछ मुझसे आता है। कृष्ण भावना भावित होने का ये एक मार्ग है कि इस बात को समझना कि सब कुछ कृष्ण का है, सारी संपत्ति कृष्ण की है, सारा जगत कृष्ण का है, हमारा शरीर कृष्ण का है, हमारा जीवन कृष्ण का है, हम स्वयं कृष्ण के हैं। इन चार श्लोकों में इस बात को समझाते हैं भगवान कृष्ण, और साथ ही साथ वो ये भी समझाते हैं कि ऐसे लोग जो इस चीज को समझ लेते हैं तो क्या कार्य करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, प्रीतिपूर्वक वो मेरी पूजा करते हैं, मेरे चिंतन में लगे रहते हैं, उनके चित्त मुझ में लगे रहते हैं, उनके प्राण मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, तो ये कार्य भक्तों के वो बतलाते हैं। और इतना सब सुनने के बाद अर्जुन ये स्वीकारते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, कि आप ही परम सत्य हैं। कई स्थानों पर हमने ये स्मरण देखा है, एक भगवद गीता का एक संस्करण था जिसमें एक शब्द को बदल दिया गया था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, लेकिन एक भगवद गीता के संस्करण में लिखा था अर्जुन ने पूछा। केवल एक शब्द बदल देने से सारा अर्थ उसका बदल गया, अर्थात इतना सारा ज्ञान जो भगवान ने दिया उसको सुनने के बाद भी अर्जुन ने पूछा, परम ब्रह्म परम धाम, कौन परम ब्रह्म है, कौन परम धाम है। तो कितनी मूर्खता है ये, अर्जुन क्या इतना मूर्ख व्यक्ति था? कृष्ण से वो ज्ञान ले रहा था, सारे तरह का ज्ञान उसने लिया, ध्यान योग, ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग, सबका ज्ञान लिया, और उसके बाद जब भगवान ने अपने आप को पूर्ण रूप में उसके सामने प्रकट किया, उसने माना परम ब्रह्म परम धाम आप हैं। अर्जुन उवाच, तो ऐसे लोग जो भगवद गीता के सार को नहीं समझते हैं, भक्ति से भगवद गीता को ग्रहण नहीं करते हैं, वे अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन भगवद गीता में साफ साफ बताया गया है परम ब्रह्म परम धाम, कृष्ण ही परम भगवान हैं, कृष्ण ही परम सत्य हैं, और इनके आगे और कोई नहीं है। और साथ ही साथ इस तथ्य को भी स्थापित किया जाता है कि भगवान जीवात्मा से अलग हैं। इस श्लोक में हम लोग देख सकते हैं अर्जुन बता रहा है कि आप ही परम पुरुष हैं, आप शाश्वत हैं, आप आदि पुरुष हैं, अजन्मा हैं, अलग अलग रूपों से वर्णन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि भगवान जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा आदि पुरुष नहीं है, जीवात्मा परम सत्य नहीं है, जीवात्मा परम धाम नहीं है। अर्थात जो परम सत्य हैं, परम धाम हैं, परम गति हैं, परम पुरुष हैं, वो जीवात्मा से भिन्न हैं, जीवात्मा से अलग हैं। इस चीज को हमें समझना चाहिए। कई स्थानों पर ऐसी संस्थाएं हैं जो इन बातों का प्रचार करती हैं कि आज आप माया में हैं, आज आप अपनी स्थिति को भूल गए हैं, लेकिन दरअसल आप ही भगवान हैं। और कुछ समय में ज्ञान प्राप्त करके, तपस्या करके, आप फिर से अपनी मूल स्थिति को प्राप्त कर लेंगे और फिर से भगवान हो जाएंगे। तो उनके अनुसार जितने भी लोग हैं, मनुष्य, वो सारे भगवान हैं। हमें पता नहीं वो जानवरों के बारे में क्या सोचते हैं, शायद ऐसा होता होगा वो अपने घर में अगर कुत्ता पालते होंगे तो उसको भी नारायण कहकर पुकारते होंगे, ये भी नारायण है, मायावादी है, सब कुछ है। लेकिन वो ज्यादातर मनुष्यों के विषय में कहते हैं कि सारे मनुष्य जो हैं वो अंत में सब मुक्ति हो जाएगी और सब एक विलीन होकर एक बन जाएंगे, सब नारायण हो जाएंगे, सब भगवान हो जाएंगे, क्योंकि हम सब भगवान हैं, भूले हुए हैं। एक हम बहुत प्रसिद्ध स्वामी, उनकी एक कोई किताब से थोड़ा सांझ पढ़ रहे थे, तो उसमें यही लिखा था कि भगवान को पाना कोई कठिन नहीं है, भगवान को पाना चाहिए, सत्य की खोज करनी चाहिए, लेकिन सत्य को कहाँ ढूंढेंगे? सत्य कुछ और नहीं है, भगवान कुछ और नहीं है, आप ही सत्य हैं, आप ही भगवान हैं। ऐसे प्रचार ये भगवद्गीता पढ़कर किए जाते हैं, ये भगवद्गीता के अर्थों से किया जाता है, क्योंकि उसके अर्थ को बदल दिया जाता है। लेकिन भगवद्गीता केवल एक ही संदेश देती है, कृष्ण परम भगवान है, केवल कृष्ण का नाम लेना चाहिए। इसीलिए भगवान बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, जो लोग प्रीतिपूर्वक मेरा चिंतन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूं। और बुद्धि क्या है? इस जगत में अपनी बुद्धि के द्वारा कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजों को बना लेना, एक एरोप्लेन बना लिया है व्यक्ति ने, मनुष्यों ने एरोप्लेन बनाया अपनी बुद्धि लगाकर, तो क्या यह बुद्धि का सदुपयोग है? क्या लाभ होता है उससे? बहुत सारे लाभ है, एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंच जाते हैं, बीच में कभी कभी हाईजैक हो जाता है वो अलग बात है, क्रैश हो जाता है वो अलग बात है, कुछ 100-200 लोग मर जाते हैं, 300 लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्लेन तो बनाया, ट्रेन बनाई, गाड़ियां बनाई, ये इनकी प्रगति है। इस प्रगति से क्या प्राप्त करते हैं? कोई व्यक्ति अगर प्लेन में बैठकर इधर से उधर चला जाता है तो उसे क्या प्राप्त होता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति को नरक में भेजा जाए, नरक में क्या होता है? आप लोग गए हैं कभी नरक में? कोई गया है नरक में? कोई नहीं? लोग गोलोक से आ रहे हैं सीधा। अच्छा है आप लोग ना जाए तो प्रार्थना करेंगे गोकुलानंद जी से। तो समझिए कोई नरक में है, और अगर आप लोग भागवतम पढ़ते हैं तो सुखदेव गोस्वामी 28 तरह के नरकों का वर्णन करते हैं भागवतम में। तो अगर किसी से कहा जाए कि आपको सारे 28 नरकों की हम सैर कराएंगे, लेकिन एयर कंडीशन प्लेन में बिठा के कराएंगे, आप जाएंगे वहां पर नरक की यातना भोगेंगे, फिर उसको आपको प्लेन में बिठाकर दूसरे नरक में ले जाएंगे, वहां पर आप यातना भोगिए आनंद से एकदम, फिर आपको तीसरे नरक में ले जाएंगे। तो अगर जो व्यक्ति बोलेगा हाँ ये सही, ये प्रगति है, पहले नरक में नंगे पांव ले जाया जाता था चलती हुई धूप में, लेकिन आजकल प्लेन में ले जाते हैं, तो ये प्रगति हो गई है। तो ये कोई प्रगति नहीं है, ये कोई प्रगति है? एक नरक से दूसरे नरक में जाने के लिए प्लेन इस्तेमाल करना, ट्रेन इस्तेमाल करना, तो ये सारा जगत ही दुखालय है। और जब जगत दुखालय है तो अमेरिका भी दुखालय है, इंडिया भी दुखालय है, दिल्ली भी दुखालय है, और बेलगाम भी दुखालय है, केवल गोकुलानंद मंदिर छोड़कर, है ना? तो एक दुखालय से दूसरे दुखालय में जाने के लिए हमने प्लेन बना लिए हैं, और हम सोचते हैं हमारी प्रगति हो गई है, हम एयर कंडीशन प्लेन में बैठकर जाते हैं इसलिए हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, हम ट्रेन में बैठकर जाते हैं एक दुखालय से दूसरे दुखालय तो आगे बढ़ गए। तो इस बुद्धि के उपयोग का क्या लाभ है? ये केवल एक धोखा है, हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपनी आंखों के सामने पड़े हुए पर्दे को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सत्य को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, परम ब्रह्म क्या है उसे जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, केवल आंखों पर जो पर्दा पड़ा है उसको और गाढ़ा करे जा रहे हैं। जैसे हम लोग अगर कहीं पर खड़े हों अंधकार में, वो दूसरी तरफ रोशनी हो और बीच में एक पर्दा हो, हमारे पास अंधकार है, और हम लोग उस पर्दे को हटाने की बजाय और उसमें अच्छे अच्छे सिल्क के पर्दे डालते रहे हैं, तो क्या लाभ होगा? रहेंगे तो अंधकार में ना। तो हमारी बुद्धि का उपयोग हम लोग केवल इसी कार्य के लिए करते हैं। बुद्धि का उपयोग होना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। ये बल असली बल है। जिसके पास बुद्धि का बल नहीं है, निर्बुद्धि, उसके पास कुतः बलम, उसके पास कहां बल है? असली बल तो है बुद्धि का बल, सही बल, बुद्धि बलम यस्य। तो ऐसा बल हमें अपने अंदर लाना चाहिए जिससे हम लोग कृष्ण को जान सके। ये असली शक्ति है, ये असली ताकत है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा वजन उठाते हैं, 300 किलो 400 किलो वजन उठाते हैं, बड़ी कठिनाई से उनका चेहरा देखना चाहिए उस समय जब वो उठाते हैं, ऐसा कष्ट होता है उनको उठाते हुए कि अगर गलती से थोड़ा चूक गया तो सर भर सब फूट जाएगा उनका। ऐसे वो लोग उठाते हैं, बल दिखाते हैं, बल प्रदर्शन करते हैं। लेकिन भगवान और भगवान के भक्तों का बल, ये तो अद्भुत बल है। भगवान ने जब गोवर्धन उठाया था तो कोई बहुत तकलीफ नहीं हुई थी, उन्होंने बहुत सारे एक्सरसाइज नहीं की थी पहले, किसी जिम में नहीं गए थे भगवान अपने शरीर बनाने के लिए, भगवान ने ऐसे ही एक उंगली पर उठा लिया था, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई थी। भगवान के भक्त भी इतने शक्तिशाली होते हैं, वो भी ऐसे अद्भुत कार्य कर देते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति से, उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व नहीं होता है, क्योंकि वे जानते हैं परम ब्रह्म परम धाम, परम ब्रह्म परम सत्य भगवान है। यहां पर ब्रह्म शब्द को सत्य कहा गया है। वैसे ब्रह्म शब्द के अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं। ब्रह्म आत्मा को भी कहते हैं, ब्रह्म इस प्रकृति को भी कहते हैं। भगवान बताते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति च अहम् वीज सदा पिता। तो ब्रह्म शब्द की व्याख्याएं की जाती हैं, लेकिन परम ब्रह्म अर्थात जो परम सत्य हैं वो केवल एक हैं, और वो हैं कृष्ण। और इसको जानना भगवत गीता का सार है। भगवत गीता से हमें केवल यही जानना, भगवान ने कितने सारे श्लोकों में बताया, मत्तः परतरं नान्य किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे और कुछ भी नहीं है, ऐसा कहीं पर हमने नहीं सुना। किसी और अवतार में, किसी और देवी देवता ने ऐसा कहीं नहीं कहा, मत्तः परतरं नान्य। है कोई ऐसा देवी देवता जो ये कहता है मत्तः परतरं नान्य, मेरे से परे कुछ नहीं है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि सारे देवताओं में परम देवता हैं, फिर भी ईश्वर हैं, भगवान हैं। फिर भी स्वयं कहते हैं कृष्ण परम भगवान हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में शिवजी और नारद जी का संवाद है, और शिवजी उसमें घोषणा करते हैं कि परम सत्य केवल कृष्ण हैं, वो कृष्ण जो अपने द्विभुजधारी रूप में गोलोक वृंदावन में वास करते हैं। उनके ऊपर पड़ी तो उन्होंने कोई भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं की, वो छाया से दूर हट गए, और जिसके कारण पार्वती जी को क्रोध आया, फिर शिव जी को नीचे आना पड़ा। तो इस तरह से शिव जी भी ये घोषणा करते हैं कि परम ब्रह्म परम धाम केवल कृष्ण है, लेकिन केवल हम लोग मूर्खतावश इस बात को स्वीकार नहीं करते। आसपास देख सकते हैं जो कुछ भी है कृष्ण का है, उनके अलावा और क्या है। एक बार एक गुरुवायूर मंदिर, आपने नाम सुना है गुरुवायूर, कहाँ पर है मंदिर? हाँ, गुरुवायूर किसका मंदिर है? मंदिर केवल कृष्ण के ही होते हैं, बाकी सब तो बिजनेस केंद्र होते हैं, बिजनेस सेंटर, व्यापार केंद्र। कोई जागृत व्यापार केंद्र होता है और कोई सुप्त व्यापार केंद्र होता है। जागृत व्यापार केंद्र में हमें जल्दी लाभ हो जाता है, जैसे शेयर बाजार होता है ना, तो शेयर मार्केट में हम जाकर अपना पैसा लगाते हैं तुरंत मिल जाता है, वैसे व्यापार केंद्र लोगों ने खोले हैं। दरअसल कोई व्यक्ति देवी देवताओं से भी व्यापार करता है तो एक तरह से उनका अपमान करता है। देवी देवता बहुत ऊंची स्थिति पर हैं, इसलिए उनके पास केवल किसी इच्छा से जाना और भक्त हैं जैसे शिव जी हैं, अगर हम उनको देखें तो हमें एक परम वैष्णव का ध्यान आना चाहिए कि शिव जी परम वैष्णव हैं। ध्यान आता है शिव जी भगवान हैं, कम से कम हमें कुछ थोड़ा बहुत सोना दे दें, कुछ ये दे दें, कुछ वो दे दें, घर भी नहीं बनाया है, किसी पेड़ के नीचे बैठ कर बस जप करते हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं तो एक बहुत सुंदर भजन में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, हम लोग थोड़ा से भजन को गाएंगे। पेज नंबर 34 पर है, आप लोगों को वैसे पेज नंबर 34 खोलिए। तुम्हें सर्वेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे छाये विश्व जन संहार, तुम्हें सब लोगों को दिए हैं ना, तो ब्रह्म कर न सृजन, तब क्षम तो विष्णु कर न पालन, तब क्षम शिव कर न संहार,
लेकिन जब तक हमें निज बल भरोसा है या निज बल के ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर भरोसा है, तब तक हो सकता है हम इस जगत में भगवान की कृपा से थोड़ी बहुत प्रगति कर लें। लेकिन जिस वक्त व्यक्ति भगवान पर भरोसा करने लगता है, अपने बल की चेष्टा प्रयास करना छोड़ देता है, उस समय जब समर्पण कर देता है भगवान को, तो वहाँ पर एक थे, उन्होंने सोचा कि मैं अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने वो लोग उनके उसको दूर करना था तो इधर उधर भागे। ब्राह्मण आदमी है मंदिर में रहते हैं, मंदिर में दूसरा व्यक्ति का थोड़ा सा बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने कहा नहीं नहीं वो ऋषि है तो सभी ऐसा नहीं कह सकते, ठीक ठीक बताओ उसने क्या कहा। उन्होंने कहा नहीं, उसने कहा मत्स्य से शुरुआत करो। उसने कहा नहीं, मत्स्य मतलब मत्स्य अवतार, मछली नहीं। उसने कहा है मतलब ऋषि कह रहे थे कि आप अवतारों का गुणगान करना शुरू कीजिए और उसकी शुरुआत मत्स्य अवतार से कीजिए। तभी ब्राह्मण ने कहा ये बात सही। तो उसने एक ग्रंथ लिखना शुरू किया, उसमें 100 श्लोक उन्होंने लिखे जिसे नारायणम कहा जाता है। और ये श्लोकों की रचना जब वो कर रहे थे तो उन्हें तो इतना ज्ञान नहीं था, उन्होंने उस समय प्रभुपाद जी ने भागवतम नहीं लिखी थी तो पूरा सब अवतारों का वर्णन नहीं था, तो उन्हें ज्ञान नहीं था ज़्यादा। तो फिर भी वो लिखते और भगवान से प्रार्थना करते आते तो भगवान उनकी मदद किया करते। जैसे जब वो नरसिंह रूप का वर्णन कर रहे थे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान के पास गए गुरुवार मंदिर में और भगवान से पूछने लगे कि भाई ये नरसिंह भगवान जो नरसिंह देव का रूप आपने लिया था चलते कैसे थे, मुझे उसका वर्णन करना है। नरसिंह देव का रूप का वर्णन तो मुझे पता है लेकिन वो चलते कैसे थे। तो उस समय भगवान एक विग्रह है वो नरसिंह रूप ले लेते थे और उन्हें चल कर दिखाते थे या कोई और अवतार के विषय में पूछते थे कि जब राम का आपने अवतार लिया तो आप धनुष्बाण कैसे पकड़ते थे, तो भगवान उन्हें धनुष्बाण पकड़ कर दिखाते थे कि मैं उसे पकड़ा करता था। ऐसे अलग अलग अवतारों का वर्णन उन्होंने बहुत सुंदर श्लोकों में किया। और क्योंकि ये भगवान की प्रेरणा से उन्होंने लिखे थे, भगवान की सहायता से लिखे थे, इसलिए बहुत प्रसिद्ध हो गया, बहुत मधुर थे। और हर रोज ये इन श्लोकों का पाठ मंदिर में किया करते थे और जब ये पाठ करते तो बहुत मधुर होते, क्योंकि आप देखिए भगवान ने स्वयं लिखवाया है, उनकी प्रेरणा से लिखा है, कितना मधुर होगा। भगवद गीता भी कितनी मधुर है, हम लोगों को समझ में नहीं आती है बात अलग है। कभी कभी श्लोक गाने पड़ते हैं तो लोग ऐसे नीचे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं। श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान की वाणी है, कितना अच्छा लगता है सुनने में। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवं प्रसिद्ध हो गए, अनेक राजा बड़े बड़े लोग वहाँ पर। लेकिन उस प्रसिद्धि उस यश के साथ थोड़ा सा अहंकार भी आ गया, विशेष भक्त हो गया है भगवान सुंदरम। जो व्यक्ति उनके पास आया उसने एक ग्रंथ लिखा था, पॉट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का क्या बोलते पॉट यानी ज्ञान का मसी का लिखा बनता है ना उसका पॉट को, यानी समझ लीजिए ज्ञान का कुछ भंडार, ऐसा कुछ उसने नाम दिया था। तो छोटा सा उसने सुंदर ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ को लेकर आए भक्त राय के पास और कहने लगे कि आप इतने बड़े भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं, आपने इतने सुंदर सुंदर श्लोकों की रचना की है, मैंने भी एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है, साधारण सा ग्रंथ है, आप केवल इससे एक फॉरवर्ड टीका भी नहीं यानी इसको पहले शुरुआत में लिखते हैं ना किसी ग्रंथ के भूमिका से पहले कोई प्रसिद्ध व्यक्ति लिख देता है ये ग्रंथ बहुत अच्छा है मैंने पढ़ा है ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा ऐसे छोटा सा कुछ लिख दीजिए मेरे लिए, बहुत साधारण व्यक्ति है मैं, इतना बड़ा भक्त नारायण की मैंने रचना की है, भगवान ने स्वयं मुझे उसमें मदद की है, मैं उस छोटे से ग्रंथ के लिए कैसे कुछ टीका लिख सकता हूँ, तो कौन सी भाषा में लिखा है? तो उन्होंने कहा मैंने मलयालम में लिखा है। मलयालम में लिखा, भक्ति का रस मलयालम में नहीं आता है, तो भक्ति का रस केवल संस्कृत में आता है। तो संस्कृत में अगर तुम लिखोगे ग्रंथ तो मैं उसको पसंदा
गए, उसको दंडवत प्रणाम किया, उसके चरण पकड़े कि नहीं आप चलो मंदिर में,
और केवल मैं आपके ग्रंथ पे लिखूंगा ही नहीं, आप भी मेरे साथ बैठकर रोज अपना ग्रंथ पढ़ो। तो वो मंदिर में आए और ग्रंथ पढ़ने लगे, लेकिन बाकी जो ब्राह्मण थे उन्हें अच्छा नहीं लगा कि दूसरा व्यक्ति आकर अपना कोई ग्रंथ पढ़ रहा है। लेकिन अब भगवान का आदेश था या वो जो भट्टराय थे वो कह रहे थे तो मना नहीं कर पाए। तो उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है आप पढ़िएगा अपना ग्रंथ, लेकिन पहले आप अभ्यास कीजिए, छोटा सा परीक्षा दीजिए आप छोटी सी। तो विष्णु सहस्त्र नामों का उच्चारण आप कीजिए पहले, और तब फिर हम आपको अनुमति देंगे कि आप अपना जो ग्रंथ है उसको पढ़ सकें। तो विष्णु सहस्त्र नामों का उच्चारण करने लगा। तो धीरे 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 करते करते वो आया उस नाम पर जहां पर कहा जाता है पद्मनाभो अमरम, पद्मनाभो अमरम। तो उच्चारण में थोड़ी गलती कर गया, उसने कहा पद्मनाभ मरम, मरे हुओं के ईश्वर हैं पद्मनाभ मरम, या फिर ये पेड़ों के ईश्वर हैं, अलग अलग उसकी व्याख्या की जा सकती हैं, या फिर ये केवल मनुष्यों के ईश्वर हैं। तो अचानक ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया, निकारे कितने मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुम भगवान को किसी भौतिक चीज से जोड़ रहे हो कि वो मरे हुओं के ईश्वर हैं, पेड़ों के ईश्वर हैं, मनुष्यों के ईश्वर हैं, भगवान तो आध्यात्मिक है, किसी भौतिक चीज से उन्हें नहीं जोड़ना चाहिए, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है तो कैसे तुम ये शास्त्र पढ़ सकते हो। तो उस समय मंदिर में अचानक ये आकाशवाणी हुई, भगवान पूछने लगे कि अगर मैं उनका ईश्वर नहीं हूं तो कौन है, मैं अगर पेड़ों का ईश्वर नहीं हूं तो कौन है, मैं अगर मनुष्यों का ईश्वर नहीं हूं तो कौन है, और है एक ही तो ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण। तो इस बात को हमें समझना चाहिए, हम जब भक्ति मार्ग में भी आते हैं तो केवल भक्ति के विधि विधानों में हमें नहीं चले जाना चाहिए कि वो विष्णु सहस्त्र नाम एकदम ठीक से उच्चारण करना है या भगवद गीता के श्लोक को बहुत सुंदर तरीके से गाना है, गाना चाहिए रस आता है, लेकिन केवल पूरा ध्यान उस पर नहीं, भाव होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता, इस सत्य को समझना कि सब कुछ भगवान का है, भगवान ही एक परम सत्य है। इस जगत में हम लोग सब देखते हैं हमारा अस्तित्व, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, ये सब असत है, एक ही सत्य है और वो है भगवान। हम लोग बताते हैं कि इस जीवन में आत्मा है, आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है, मृत्यु आती है शरीर को, मृत्यु आनी ही है, यही एक सत्य है। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु ही परम सत्य है जीवन का, क्योंकि मृत्यु को कोई टाल नहीं, मृत्यु एक सत्य है क्योंकि वो आती है, हमारा अस्तित्व भी सत्य है। केवल सब माया है, सर्व माया मयम जगत, यह माया। लेकिन माया क्या है, सत्य तो है, हम लोग हैं, लेकिन हम लोग शाश्वत नहीं है, और इस अशाश्वत चीज को शाश्वत समझते हैं, इसीलिए इसे माया मयम जगत कहते हैं, सर्व माया मयम जगत। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामेव केवलम, केवल भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान ही परम सत्य हैं। इसीलिए यहां पर उन्हें परम ब्रह्म कहा गया है, वो परम ब्रह्म है, परम सत्य है। आगे अर्जुन को कहते हैं परम धाम, धाम यानी एक तो है धाम जहां पर भगवान वास करते हैं, पर धाम का अर्थ दिया गया है आधार, अर्थात कई मतलब हो सकते हैं धाम के, पहला तो भगवान का धाम, दूसरा हमारा धाम, हमारी गति जहां हम जाने वाले हैं, तो भगवान हमारे लिए परम धाम है, परम गंतव्य स्थान है, परम आधार। धाम की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं आधार, यानी वो एक ऐसा स्थान है जहां पर हम सबको जाना चाहिए, हमारी परम गति है, उनके चरण कमलों का हमें आश्रय लेना चाहिए, ये परम धाम है। अन्य कई स्थान हम इस जगत में देखते हैं, जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना कर तो ब्रह्मा जी इसे 14 भागों में विभाजित करते हैं, फिर इन 14 भागों में 84 लाख और स्थान बनाते हैं जीवात्माओं के रहने के लिए। तो ये सारे स्थान हैं, इन्हें एक छोटा छोटा धाम कह सकते हैं, हमारे लिए खड़े रहते बनती है। तो ये सब स्थान है रहने के लिए, लेकिन परम स्थान कौन सा है, परम धाम कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण, उनके चरण कमलों का आश्रय, कृष्ण का आश्रय, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति, यही मनुष्य के जीवन का सार है, यही जीवात्मा का असली कार्य है। हम लोग जीवन में बहुत से कार्य करते हैं, जब कोई विद्यार्थी होता है, पढ़ रहा होता है, उसकी पढ़ाई खत्म होने वाली होती है, तो उसको चिंता हो जाती है, मुझे कोई कार्य करना है, कहीं जाना है, मुझे बेलगाम में जॉब मिलेगी कि बेंगलोर में मिलेगी कि बंबई में मिलेगी, उसे पता नहीं, बहुत चिंतित रहता है। धाम, कोई ना कोई स्थान में जाना चाहता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे थोड़े थोड़े स्थानों में चले जाएं, कहीं पर जाकर जॉब कर लें, कुछ धन कमा लें, अंत क्या होगा इसका? व्यक्ति क्यों नहीं अंत को सोचता है? केवल 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल क्यों इसी को जीवन मानता है? ये तो हमारा जीवन नहीं है। क्यों नहीं सोचता कि एक दिन मृत्यु आएगी? क्या उसका ये बैंगलोर में, बंबई में, या मस्कट में, या दुबई में, या अमेरिका में कमाया हुआ धन क्या काम आएगा? उसके किस स्थान को वो ले जाएगा? आत्मा तो चली जाएगी, वही आत्मा जिसने इस शरीर को ही सब कुछ मानकर बहुत कष्ट सहे हैं, जीवन भर संघर्ष किया है केवल कुछ धन कमाने के लिए, कागज के टुकड़े या थोड़े से सिक्के, इनको कमाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया है, अपना सारा समय उसमें लगाया है, अपनी सारी शक्ति उसमें लगाई है, इस शरीर का ख्याल नहीं किया है, शरीर को जर्जर हो जाने तक उसने काम किया है, और अंत में क्या मिला है? वो सारी चीजें, जो धन, जो संपत्ति कमाता है, यही छोड़ जाता है, अपना शरीर भी छोड़ जाता है, जिससे उसको बुढ़ापे तक प्रेम रहता है, मरने तक। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मरने तक अपने शरीर से प्रेम नहीं होता, हर व्यक्ति जब तक वो निकल, इसलिए कष्ट होता है व्यक्ति को, मृत्यु के समय कष्ट क्यों होता है? शरीर से आसक्ति है, शरीर छोड़ रहा है, इसलिए कष्ट हो रहा है। हमें किसी चीज से, हम देखते हैं जगत में आसक्ति हो, उसको छोड़ना पड़े तो कष्ट होता है। जैसे एक मां को अपने पुत्र से बहुत आसक्ति होती है, और पुत्र कहीं पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है तो माता को बहुत कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट सह लेती है कि ये चलो पुत्र की भलाई के लिए है। हमें और कोई चीज बहुत पसंद है, वो हमसे दूर जा रही है, हमको बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लगाव, सबसे ज्यादा आसक्ति हमें अपने शरीर से है, और जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाती है तो बहुत कष्ट होता है। हम सोचते हाय मेरा शरीर, बड़ा संभाल संभाल के रखा था मैंने, क्या क्या नहीं किया था इसके लिए। आप लोग कभी, वैसे हम लोग बजट बनाते, खर्चा करते हैं, कभी आप लोग बैठकर सोचिएगा कि इतने सालों में, आज कितने भी 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 50 60 साल हो गए हैं, आपने अपने शरीर पर कितना खर्चा किया है, कभी सोचा आप लोगों ने? ध्यान कीजिएगा, कभी कितना खर्चा किया है अगर आप वो फिगर निकालेंगे तो आप सोचेंगे मैंने जीवन में इतना कमाया भी है क्या, इतना खर्चा कर दिया है। सुबह से उठकर खर्चा शुरू हो जाता है आपके शरीर पर, आपको दांत ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, साबुन चाहिए नहाने के लिए, और कपड़े चाहिए पहनने के लिए। आप तब से करते आ रहे हैं, अभी से नहीं, छोटे से। और भी बहुत सारी चीजें, आजकल तो बहुत ज्यादा चीजें चाहिए, थोड़े बहुत चीजों से नहीं होता है वो, चेहरे पर लिपा पोती भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो हम लोग कितना खर्चा करते, तो वो व्यक्ति जब आत्मा उस समय जा रही है शरीर को छोड़कर, तो कष्ट होता है, यहां मेरा शरीर इतना संभाल कर रखा था मैंने, बड़े लाड और प्यार से उसको पाला था। ऐसा होता ना, वो जब कभी किसी लड़की का विवाह होता है तो माँ बाप बहुत रोते हैं, भारत में प्रथा है, अभी आजकल पता नहीं रोते हैं कि नहीं रोते हैं, पहले रोते रोया करते थे। जब विवाह होते थे, लड़की को विदा किया जाता था वधु को, तो उस समय ये प्रथा थी, हमें नहीं पता सही में रोते थे या चलो प्रथा है, जैसे ऐसा होता है चलो अब जाने वाले सब लोग रेडी हो जाओ रोना चालू करो, कुछ तो ऐसा होता होगा शायद, तो सब रोते थे। क्यों रोते थे? हाँ, बहुत प्यार से पाला, बहुत लाड लाड प्यार से उसको बड़ा किया और अब वो जा रही है। वो तो कहीं ऐसे ही पास में एक ही शहर में या दूसरे शहर में जाती है, लेकिन इस समय तो शरीर कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता, आत्मा कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता, हम छोड़कर जा रहे हैं उस शरीर को जिसको इतना संभाल कर रखा था, इतने प्यार से रखा था, इसलिए कष्ट होता है। और जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में लगा है, कृष्ण का प्रेम जिसे मिला है, कृष्ण के भक्तों का संग जिसे मिला है, वो व्यक्ति विचलित नहीं होता, वो जानता है मेरी गति क्या है, मैं किस धाम को जा रहा हूं। तो भक्ति में आने के बाद पहला सत्य परम ब्रह्म, भगवान कृष्ण ही परम सत्य हैं। दूसरी बात परम धाम, हमें कहां जाना है? ठीक है, भगवान सत्य हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना, नहीं लेना देना है, हमें वहां जाना है, कृष्ण के चरण कमलों के आश्रय में जाना है, कृष्ण को पाना है, कृष्ण की भक्ति करनी है। अगर भक्ति नहीं की तो जीवन का क्या लाभ है? मृत्यु के समय क्या आप मुंह दिखाएंगे, क्या होगा आपका? ना यमराज के सामने जाकर खड़ा होना पड़ेगा, यमराज एक लंबी सी लिस्ट पढ़ेंगे, आपको सब हाँ हाँ करना पड़ेगा, आपने ये पाप किया यस सर, ये पाप किया यस सर, ये पाप किया यस सर, कोई अच्छा कार्य किया नो सर, ठीक है नरक में जाओ, है कि नहीं, क्यों लेके जाएंगे? लेकिन अगर वही श्री प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से एक प्रवचन में समझा रहे थे, श्री प्रभुपाद कहते हैं कि पेड़ों के बहुत बड़े बड़े जीवन होते हैं, कई हजार वर्षों तक पेड़ जीता है। श्री प्रभुपाद बोलते क्या लाभ है ऐसे जीवन का, केवल दो वर्ष जियो लेकिन भगवान की भक्ति करके जियो। कभी कभी कोई बहुत बड़ा देश का रक्षक होता है, बहुत प्रेम जिसे होता है अपने देश से, तो वो कहते हैं कि हमें जीवन का एक ही लक्ष्य है, हमें अपनी मातृभूमि के लिए सर कटवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अपनी मातृभूमि के लिए सर कटवा भी देता है तो क्या लाभ मिलता है उसे? रावण की तरह ब्रह्मा जी आकर उसको 10 सर वापस तो नहीं देने वाले हैं कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, मातृभूमि के लिए अपना सर कटवा दिया, ये लो बेटा 2-4 सर और ले लो अपने, और जाओ 2-4 मातृभूमियों के लिए कटवा दो सर। क्या लाभ मिलता है उस व्यक्ति को? आप लोग सोचिए क्या लाभ मिलता है? एक कहीं पर नेम प्लेट लग जाती है उसकी कि ये फलां फलां वीर सैनिक, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, और कभी कभी 15 अगस्त में तो 26 जनवरी पे वहां कोई दिया जला देता है जाकर। एक दिल्ली में एक स्थान बनाया गया है वीर स्तंभ, बहुत बड़ा स्तंभ है, स्तंभ जानते हैं आप लोग, एक बड़ा सा ऐसा खंभा बना दिया वीर स्तंभ, जो वीर शहीद हुए थे उनकी याद में ये बनाया गया है। तो एक दिन साल में जाकर वहां कोई दिया जलाता है, साफ सफाई कर देता है, वो कौन है, वो क्या है, कहां है, कोई नहीं जानता है, क्या पता किसका शरीर लेकर उसी वीर स्तंभ के सामने वो पड़े हों, एक भिखारी के रूप में, एक प्राणी के रूप में, कौन जानता है? तो क्या लाभ है? भक्ति करो, कृष्ण को जानो, परम ब्रह्म परम धाम। तो भक्त जानते हैं कि उनकी गति क्या है, वो कहां जाने वाले हैं। अभक्त नहीं जानता, इसलिए कष्ट होता है। भक्त को कोई कष्ट नहीं है, शरीर छोड़ते समय उसको कोई कष्ट नहीं होता। अभी कुछ समय पहले हमारे आंदोलन के एक वरिष्ठ सन्यासी भगवान के धाम वापस गए, श्री श्रीधर स्वामी महाराज, उन्हें कोई कष्ट नहीं था शरीर छोड़ते समय, आराम से थे, भक्तों से बात कर रहे थे। और जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा, भगवान का विग्रह या चित्र उनके सामने था, प्रभुपाद जी का चित्र उनके सामने था, और उनको देखते हुए आराम से वो चले गए, कोई कष्ट नहीं था। तो हम लोग अभी देखते हैं प्रत्यक्ष, तो ऐसे भक्त होते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं परम ब्रह्म परम धाम, मैं कहां जा रहा हूं उन्हें पता है, जीवन भर क्या किया है आपने। अभक्त एक कारण से और घबराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने जीवन में क्या किया है, सारा जीवन पाप किया है। और कहीं मैंने सुना था बीच में एक जगह की, अगर पाप करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। तो मृत्यु के समय यह ध्यान आता है कि अरे मैंने जीवन में इतने पाप किए हैं, अब मेरा क्या होगा। जैसे एक कोई चोर हो, वो बहुत चोरी करता रहे, डकैती करता रहे, और पुलिस के हाथ में नहीं आए, भागता रहे, चिंता में रहता है, लेकिन खुश रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन जब पकड़ा जाता है तब उसकी चिंता एकदम बढ़ जाती है, कष्ट हो जाता है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे मेरे साथ, मुझे मारेंगे, गोली से उड़ा देंगे, फांसी लगाएंगे, क्या करेंगे, तो बहुत चिंता में रहता है। इसी तरह अभक्त, उसको जब मृत्यु आती है तो एकदम चिंता में रहता है, मैं कहां जाऊंगा, क्या यमदूत आएंगे, कौन से नरक में जाना पड़ेगा। और अगर उन्हें नरक के विषय में नहीं पता तो और चिंता होती है, क्योंकि पता ही नहीं है कहां जाना है। लेकिन भक्तों को पता है परम धाम, हमारा स्थान है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए भक्ति प्रार्थना करते हैं कि अंत समय में हमें केवल कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, और अंत समय में ही क्यों, हमें तो 24 घंटे कृष्ण का स्मरण होना चाहिए, हर वक्त हर क्षण कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, जीवन का उद्देश्य कृष्ण का स्मरण है, चाहे वो मृत्यु के समय हो या किसी और समय। लेकिन अगर मृत्यु के समय किया तो भगवान ये कहते हैं अंत काले चिमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर आप मेरा स्मरण करते हुए अपना ये कलेवर, अपना ये देह त्याग करते हो तो आप मेरे पास आओगे, मेरे धाम में आओगे। तो ये गति भक्तों की होती है, शुद्ध भक्तों की। इसलिए शुद्ध भक्त मृत्यु से नहीं घबराता। शुद्ध भक्त के मन में, उसकी बुद्धि पर, उसकी जिह्वा पर केवल एक ही नाम होता है, कृष्ण का। वो केवल एक ही चीज का स्मरण करता है, कृष्ण का। उसके लिए एक ही गति है, कृष्ण, उसे और कुछ नहीं दिखता। इसलिए हम लोगों को भक्ति मार्ग का पालन करना चाहिए। यह भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सब कष्टों से दूर करता है। हमें जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, और अगर हम कोई अन्य मार्ग अपनाएं तो हो सकता है थोड़े समय के लिए कष्ट दूर हो जाए, लेकिन फिर वो कष्ट आएंगे। लेकिन भक्ति मार्ग मूल अर्थात जो जड़ है उससे उखाड़ता है। अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और आप उसको हत्या कर देते हैं या उसको घर से निकाल देते हैं तो ये अच्छा है, या उसके पाप करने की प्रवृत्ति को उसके हृदय से निकाल दो वो अच्छा है। हमें केवल पापी को नहीं निकालना है, पापी को नहीं मारना है, उसके अंदर जो असुर है जिसके कारण वो पाप कर रहा है, अर्थात पाप करने की प्रवृत्ति, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्यम, अपराध, इनको दूर करना है। हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे, आप लोगों में से कितने लोगों को यह ध्यान है, हमने तीन चीजें बताई थी जिनके कारण व्यक्ति भक्ति से दूर जाता है। पहली क्या थी, असत तृष्णा, इसका क्या अर्थ होता है, असत तृष्णा मतलब ऐसी चीजों का लालच, ऐसी चीजों के पीछे भागना जो असत है, कृष्ण से संबंधित नहीं है। क्योंकि जो भी चीज कृष्ण से संबंधित नहीं है वो असत है। क्यों? क्योंकि कृष्ण परम सत्य है, परम ब्रह्म। इसलिए असत तृष्णा हमारे भक्ति में बाधा है। दूसरा क्या था? हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलताएं, जैसे किसी से द्वेष करना, हृदय में भौतिक चीजों के लिए लालच होना, धोखा देने की इच्छा होना, छल कपट, ये सब हृदय की दुर्बलताएं हैं। और तीसरा था अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध। हम लोग वैसे आज वैष्णव अपराधों पर चर्चा करने वाले थे, ऐसा हमने आपसे बताया था पिछली बार, कोई बात नहीं अगली बार करेंगे। तो वैष्णव अपराध क्या है, क्यों करने नहीं चाहिए, ये हम लोग वैसे चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब कारणों से हम लोग भक्ति से दूर रहते हैं और हमारा हृदय कृष्ण में नहीं लग पाता। लेकिन हमारे जीवन की पूर्णता, जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, हमारे अस्तित्व का लक्ष्य कृष्ण है। इसलिए कृष्ण की भक्ति कीजिए, भगवान को अपने हृदय में लाइए, ये सारी तृष्णाएं, ये दुर्बलताएं, ये अपराध अपने आप दूर हो जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, केवल कृष्ण को समर्पण। जिस दिन हमने ये कृष्ण नाम अपना लिया, केवल नाम अगर हमने अपने हृदय में अपना लिया, उस दिन यह हृदय पवित्र और निर्मल हो जाएगा और केवल भक्ति मार्ग पर हम चलेंगे, जिसके द्वारा इस शुद्धता के स्तर पर हम कृष्ण को देख सकेंगे, हम कृष्ण से आदान प्रदान कर सकेंगे, हम भक्ति कर सकेंगे। भक्ति क्या है? कई लोग भक्ति को तपस्या मानते हैं, कई लोग भक्ति को ज्ञान मानते हैं, कई लोग भक्ति को कर्म मानते हैं कि कर्म ही पूजा है। कई लोग ऐसा कहते हैं कर्म है पूजा, लेकिन कौन सा कर्म? कृष्ण के लिए किया गया कर्म ये पूजा है। ज्ञान है पूजा, ज्ञान ही भक्ति है, लेकिन कौन सा ज्ञान? कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण के विषय का ज्ञान, ये सर्वोच्च है। तो इसलिए कई लोग न कर्म है, ना ही कोई योग है, ना ही कोई ध्यान है, भक्ति तो प्रेम का आदान माल रख जो भक्त और कृष्ण के बीच होता है, इसे भक्ति कहते हैं। जब भक्त अपने और भगवान के बीच एक संबंध स्थापित करता है और उसके बाद भगवान के साथ आदान प्रदान करता है, इस स्थिति को भक्ति कहते हैं। ये भक्ति है, भक्ति एक मार्ग है जो हमें कृष्ण की ओर ले जाती है, और भक्ति ही हमारा गंतव्य है, भक्ति ही हमारी स्थिति है। अर्थात जो जाने का मार्ग है वही गति है, भक्ति के द्वारा हम भक्ति तक पहुंचते हैं। अर्थात अपरिपक्व भक्ति के द्वारा हम परिपक्व भक्ति तक पहुंचते हैं। तो भक्ति हमारा गंतव्य स्थान है। और भक्ति क्या है? प्रेम का आदान प्रदान, भक्तों में प्रेम होना, कृष्ण से प्रेम हो ले, मंगलवार को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।
श्री गुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं सजीवं साकेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सदनललिता श्रीशाखान्वितां च हरे कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Thank you. Thank you.